हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे श्वेता निक्की परमार के उपन्यास दुराह रहा ए वफा की कहानी को लेकर। आज इसके दूसरे भाग में हम नीलेश और खनक के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बात करेंगे, जो कि इस उपन्यास का पहला पाठ है। तो आइए बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। हेलो हेलो जी, कौन? मैं नीलेश। ईश, मतलब नीलेश? हाँ, मैं ईश। पहचान तो लिया या फिर से मुखातिब कराऊं खुद को? अच्छा, तुम खनक ही हो ना? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने नीलेश जी, मैं खनक ही हूँ। नीलेश जी, अच्छा। कैसी हो तुम? कहाँ हो? यहीं हूँ, इसी जहाँ में। और बिल्कुल सही हूँ। कहाँ गायब हो गई थी तुम यार? क्यों, क्या हुआ? कोई काम था क्या? कैसी बातें करने लगी हो तुम? कैसी बात कर रही हूँ? जो सच है वो पूछ रही हूँ। इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही हो? मैं ऐसी ही हूँ। नहीं, ऐसी नहीं हो तुम। अच्छा, बहुत अच्छे से जानते हो आप मुझे। हाँ जानता हूँ। बहुत तेज हंसी थी खनक। ये फिर से। बहुत तेजी से हंसी थी खनक, लेकिन उसकी हंसी में एक टीज थी, जैसे कोई मजाक किया गया हो उसके साथ। नीलेश बस उसकी हंसी को ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा रूप है खनक का। जहाँ तक उसे याद था, खनक तो अपने नाम के ही मुताबिक बहुत हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। उदासी का तो नामो निशान ही नहीं होता था उसकी ज़िंदगी में। हंसती, खिलखिलाती, हर वक्त चहकती रहती थी खनक। गुस्सा तो कभी आता ही नहीं था उसे। हमेशा बस समझाती रहती थी दूसरों को। इतना बोलती थी, इतना बोलती थी कि कभी कभी कहना पड़ता था, चुप भी रहा करो यार। हर क्षेत्र में पारंगत होने का शौक था उसे, पर आज जो खनक दिखी वो कोई और ही लगी। बिल्कुल बदली हुई, बहुत ज्यादा गंभीर और अजीब सी। ऐसा क्या हो गया जो वो इतना बदल गई? पता करना चाहिए। आखिर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी वो, या कि शायद हमसफर? पता नहीं ऐसा क्या हुआ था इन 5 सालों में। इन सब सवालों के जवाब तो ढूंढने ही होंगे। तृष्णा, जरा मेरा फोन ला कर देना, नीलेश ने तेज आवाज में पुकारते हुए कहा। तो उसकी पत्नी तृष्णा दौड़ती हुई आई और उसे फोन पकड़ाया। हालांकि साथ में ही रखा था पलंग के दूसरे किनारे पर, लेकिन नीलेश की आदत ही ऐसी थी। चाय लीजिए, तृष्णा ने कहा। क्या बात है, परेशान हो बहुत, क्या हुआ? आज खनक मिली थी, नीलेश परेशान सा बिना उसकी तरफ देखे ही बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर आपकी तलाश पूरी हो गई। फिर इतने उदास क्यों हो? समझ नहीं आ रहा आखिर खनक को हो क्या गया है, वो तो ऐसी न थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो रही है। यार यहाँ जिंदगी पर बनाई और तुम्हें चाय की पड़ी है, तुम ही पी लो। अरे पर सुनो तो। मगर नीलेश ने तृष्णा की एक ना सुनी और चल दिया। तृष्णा ने प्याला लिया और रसोई में रख बच्चों के कमरे में चली गई। उसके बेटे की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। नीलेश कभी भी उससे ऐसे लहजे में बात नहीं करते थे, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा। पर सोचा परेशान है, और ये सोचकर उसने अपना मूड खराब नहीं किया। बच्चे को पढ़ाने में लग गई, क्योंकि परीक्षाएं जो शुरू हो रही थी। नीलेश वाकई बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करे, कैसे पूछे खनक से, अजीब पशुपेश में था। किंतु कुछ तो उपाय होगा, कैसे विकल्प निकाले वो? यही सब सोचते हुए नीलेश खनक के घर पहुंच गया, और उसे देखते ही खनक बोली, आप यहां तक आ गए? आपको समझ में नहीं आता है क्या? नहीं आता, बेवकूफ हूं, पलटकर नीलेश ने भी जवाब दे दिया। चाहते क्या हो, क्यों परेशान हो इतना? तुम्हें पता नहीं क्यों हूं? मेरे बारे में सोचकर चिंता करने का हक खो चुके हैं आप। अच्छा, कैसे खो चुका हूँ? थोड़ा ठहर कर फिर लंबी सांस लेकर बोला, खैर ये सब छोड़ो और मुझे बताओ आखिर बात क्या है, क्या कारण है इस उदासी का? नीलेश जी प्लीज। नो नो प्लीज। और ये क्या नीलेश जी लगा रखा है? फिर वो वहीं बैठ गया खनक के सामने, उसकी गतिविधियों को देखता रहा। क्यों, आखिर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पता है? क्या जानना चाहते हो, पूछो। तुम्हारी बेरुखी का सबब? बस क्या करोगे जानकर? बस अपनी उस खनक से मुलाकात चाहता हूं जो हर वक्त बेबाक हंसती मुस्कुराती रहती थी बिना किसी कारण के। कभी ना गुस्सा होती थी, ना नाराज, ना कभी रूखा व्यवहार होता था किसी से भी, ना कभी झगड़ती थी किसी से, बहुत प्यार से बात करती थी सभी से। मुझे वही खनक चाहिए। वो अब नहीं है, काफी साल पहले ही उसका वो स्वरूप खत्म हो चुका है। ऐसे कैसे हो गया? बेकार की बकवास कर रही हो, मैं क्या जानता नहीं हूं तुम्हें? सच? आप जानते हो मुझे? आर यू श्योर? और फिर इतना तेजी से जब वो हंसी थी तो उसकी आंखों का दर्द और हंसी के पीछे की उदासी नीलेश से छुपी न रह पाई। किस बात का इतना दर्द ओढ़े बैठी हो, बताओगी नहीं? कभी तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त हुआ करता था मैं, आज क्या इतना भी हक नहीं? हक? अच्छा हक, अच्छा लग रहा है ये शब्द, पर मैंने किसी को भी अभी अधिकार नहीं दे रखा। आपके बीवी बच्चे हैं, उन पर हक रखिए और जताइए। नमस्कार नीलेश जी, मैं चलती हूँ। ऐसे नहीं जा सकती हो तुम, समझती क्या हो खुद को? जो कह दोगी वो सबको करना होगा, ये जरूरी है क्या? सब क्या गुलाम है तुम्हारे? बहुत बोल लिया है तुमने, अब बस करो और मेरी सुनो। चिल्लाइए मत नीलेश जी, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। ढंग से बात कर सकते हैं तो कीजिए, वरना नमस्ते। बहुत विचलित हो गया था नीलेश खनक की ऐसी बात सुनकर, खुद से ही पूछने लगा, क्या ये वही खनक है? फिर थोड़ा शांत हुआ नीलेश, हालांकि बेहद गुस्से में था, फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। वो समझने में पूरी तरह से नाकाम था कि खनक क्यों उससे इतनी बेरुखी और बदतमीजी से बात कर रही है। थोड़ा जब संभला तो फिर बोला, माफी मांगना चाहता हूं अपनी ऊंची आवाज को लेकर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं। मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या हुआ है तुम्हें? ओफो, कहा तो मैंने, क्या एक बार में आपको समझ नहीं आता? कुछ नहीं हुआ है मुझे, और अगर हुआ भी है तो आप हैं कौन जिसे मैं बताऊं? ईश, ईश हूं मैं, वही ईश जिसे तुम सब कुछ बताया करती थी। चाहे कुछ भी कह लो तुम, मैं पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा खनक। जाइए यहां से अभी आप ईश, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और कभी भी लौट कर मत आना आप। प्लीज जाइए, प्लीज आप जाइए, मैं अकेली ठीक हूं, बहुत खुश हूं, आप जाइए। ये कहकर फूट फूट कर रो पड़ी खनक। तो नीलेश ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को एक हथेली से ऊपर उठाया और दूसरी हथेली से उसके आंसू पोंछने लगा। न जाने अचानक क्या हुआ कि खनक उसके सीने से लिपट गई और फिर और ज्यादा तेज रोने लगी। नीलेश बस उसका माथा सहलाता रहा तब तक जब तक वह शांत नहीं हो गई। इस बार फिर नीलेश ने कोशिश नहीं की, शांत नहीं हो गई तक ही रखेंगे। इस बार फिर नीलेश ने कोशिश नहीं की, बल्कि सोचा कि बाद में या फिर कभी पूछ लेगा। उसने प्यार से खनक को बिठाया और उसके लिए पानी लाया और फिर अपने हाथों से उसे पिलाने लगा। खनक ने भी अपने दोनों हाथों से पानी के गिलास को पकड़ लिया और जब अपने होठों से हटाया तो वो थोड़ा शांत थी। दोनों हथेलियों से उसने अपनी आंखों को दबाया और फिर मुंह ढांप लिया, पर तुरंत ही हटा भी ली अपनी हथेलियां। फिर से एक लंबी सांस ली और नीलेश की तरफ पलटी और बोली, चाय पियोगे? हाँ पी लूंगा, अदरक वाली बिना चीनी की मुझे पता है। नीलेश के कुछ कहने से पहले ही खनक ने उसकी जिज्ञासा शांत कर दी। नीलेश को बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे खनक को अब तक उसकी पसंद नापसंद पता है, जबकि उसे शायद ही कुछ खनक के बारे में पता हो। इतने में ही खनक चाय लेकर आ गई। चाय लीजिए। नीलेश ने उसके हाथ से चाय का प्याला ले लिया और मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, मुझे भी पीनी ही थी। अच्छा, मतलब तुमने अपने लिए बनानी थी इसलिए मेरे लिए भी बना दी। फिर तो दोगुना शुक्रिया। कुछ नहीं बोली इस बार खनक और चुपचाप चाय का घूंट पी लिया। फिर नीलेश की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी। यह बात तो तय है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर इतनी ज्यादा खफा क्यों हो ये नहीं समझ आ रहा। यह सुनकर खनक झटके से उठी तो नीलेश ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोलना जारी रखा, खनक अब बस, नहीं पूछूंगा अगर तुम नहीं बताना चाहोगी, पर ऐसे हाल में भी तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। खुश रहो, वही काफी है मेरे लिए। मैं बाद में आता हूँ, मना मत करना प्लीज। कहकर नीलेश ने खनक के माथे से उस पर झूलती लटों को हटाया और धीमे से एक चुम्बन दे दिया, फिर वहां से चला गया। उसके जहन में सिर्फ कुछ बातें घूम रही थी और ये शब्द आते हैं लबों पर मगर लगता है, शब्द आते हैं लबों पर मगर डर लगता है कुछ यूं कि रूह कांप उठी है उनके तेवर देखकर। तो ये था पहला पाठ हमारी तो ये था श्वेता निक्की परमार के उपन्यास दोराह राहे वफा का पहला पाठ। आगे जानने के लिए मुझसे आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ यहीं पर। मैं फिर आपसे जल्द ही रूबरू होंगी। और हाँ, आप इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं, ये आपको हर ई प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। नमस्कार।